समाचारों में प्रधानमंत्री ने विदेशों से अधिक ऑस्ट्रेलियन आगमन को सुरक्षित करने के लिए नॉर्दर्न टेरिटरी के साथ एक हब सौदे की पुष्टि की। विक्टोरियन प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने कहा कि राज्य प्रतिबंधों में ढील देने के लिए तैयार है और भारत ने कहा कि चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। डीजे प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि वो ऑस्ट्रेलियन लोगों को विदेशों से घर लौटने के लिए नॉर्दर्न टेरिटरी की सरकार के साथ एक संगरोध सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। डार्विन के पास हॉवर्ड स्प्रिंग्स हब एक महीने में 1,000 यात्रियों को समायोजित कर सकेगा और यूके, भारत और दक्षिण अफ्रीका के कुछ यात्री अब वापस देश में आ सकेंगे। श्री मॉरिसन ने कहा कि जल्द ही ऑस्ट्रेलिया वापस आने के लिए कुछ यात्रियों को क्वांटा उड़ानों पर प्राथमिकता भी दी जाएगी। उनका कहना है कि जब मेलबर्न में भी उड़ानें आ सकेंगी तब और अधिक लोग वापस लौट सकेंगे, लेकिन फिलहाल यहां मेलबर्न में कोरोना वायरस स्थिति चुनौतीपूर्ण है।
Around about just over 4,000 Australians who are identified and DFAT identified as vulnerable on the 18th of September, just over a quarter of those have now been able to return to Australia, and we're making very good progress on ensuring that more and more Australians are getting home.
फेडरल विपक्ष नेता एंथनी एल्बनीसी ने प्रधानमंत्री द्वारा आज की योजनाबद्ध राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक के स्थगन पर सवाल उठाया है। कल रात प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्वींसलैंड में विमान की तकनीकी समस्याओं की पुष्टि की, जिसके कारण इस बैठक के लिए उनके पहुंचने में देरी हुई। लेबर के एंथनी एल्बनीसी का कहना है कि स्कॉट मॉरिसन इन कठिन समयों में ऑस्ट्रेलियन लोगों की देखभाल करने की अपनी आवश्यकताओं की जगह राजनीतिक फंड जुटाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।
I've consistently said that this is a prime minister who's good at announcements but not good at delivery, and it appears now he can't even deliver himself to a national cabinet meeting.
स्कॉट मॉरिसन अब सिडनी लौट आए हैं। विक्टोरिया के प्रीमियर ने कहा है कि आज राज्य कोरोना वायरस परिणामों के बारे में आशान्वित हो सकता है। राज्य में केवल 2 नए मामलों का पता चला है और कोई मौत नहीं हुई है। राज्य सरकार रविवार को कुछ नियमों में ढील देने के लिए तैयार है और प्रीमियर ने व्यापक परीक्षण प्रयासों के लिए समुदाय की प्रशंसा की है। विक्टोरियन व्यवसाय सरकार से जल्द ही प्रतिबंधों को कम करने का आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी आर्थिक क्षति हुई है। डेनियल एंड्रूज का कहना है कि सप्ताहांत में महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी और आने वाले हफ्तों में भविष्य के नियमों पर भी चर्चा की जाएगी।
We've come such a long way, and the most impressive thing is that there is a determination in the Victorian community to not fritter away all the great gains we've made. There is a genuine determination to see this thing off, to get the job done and to get it done properly.
न्यू साउथ वेल्स सरकार ने आश्वस्त किया है कि न्यूजीलैंड के पर्यटकों को आगमन पर हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से अलग रखा जाएगा। आज से न्यूजीलैंड के लोग न्यू साउथ वेल्स, एसीटी और उत्तरी क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर लौटने पर एक पखवाड़े के लिए क्वारंटीन में जाना होगा। पूर्व सांसद डैरल मैक्वायर की जांच कर रहे एंटी करप्शन कमीशन ने संबंधों की गोपनीय विवरण को ऑनलाइन प्रकाशित करने के लिए माफ़ी मांगी है। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस ब्लेरिजिक्लियन श्री मैक्वायर के साथ संबंध के कारण अपनी अखंडता पर उठे सवालों के दबाव में हैं। उन्होंने सोमवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वतंत्र आयोग का सामना किया था और कहा कि उन्हें श्री मैक्वायर के वित्तीय व्यवहार के बारे में पता नहीं था। इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आज सुबह ICAC से रूथ मैकॉल ने लीक की हुई ट्रांसक्रिप्ट के लिए न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर ग्लैडिस बेरिजिक्लियन और उनके साथी से माफी मांगी।
On behalf of the commission, I would like to apologize both to Ms. Berejiklian and Mr. Maguire for that inadvertent uploading.
कपास की खरीद के बारे में चिंताएं हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चीनी मिलों को ऑस्ट्रेलियन कपास स्वीकार करने के लिए रोकने के लिए कहा गया है और उद्योग जल्द ही टैरिफ का सामना कर सकता है। फेडरल कृषि मंत्री डेविड लिटिलपॉट का कहना है कि चीनी अधिकारियों को ऑस्ट्रेलियन लोगों को स्पष्टता देने की आवश्यकता है और वो इस मुद्दे पर बातचीत में संलग्न होने के लिए तैयार हैं।
You can only resolve differences by actually having your hand out and being prepared to have that conversation. We are showing leadership as an Australian government and are prepared to have that conversation.
यमन के गृह युद्ध में कैदी बने दर्जनों लोगों को मुक्त कर दिया गया है। इस संघर्ष ने दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट को जन्म दिया। इससे पहले देश के ईरान समर्थित विद्रोहियों ने 2 अमेरिकन्स को मुक्त किया और एक तीसरे व्यक्ति के अवशेष दिए जिसकी बंधक रूप में मृत्यु हो गई थी। दोनों युद्धरत पक्षों से कम 700 कैदियों को 7 उड़ानों से ले जाया गया है। यमन में रेड क्रॉस के इंटरनेशनल कमेटी के लिए डेप्यूटी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर और प्रवक्ता यारा ख्वाजा ने
We, as the International Committee for the Red Cross, are very happy that this operation has started, and the operation to facilitate the release of the detainees, according to the agreement that the parties to the conflict agreed upon in the city of Montreux last month. I cannot overstate the fact that behind me, more than 100 people will be returning to the embraces of their families. This plane which landed from Saudi Arabia, which arrived from Sanaa, Saudi Arabia, is the beginning.
वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारत की ओर के बुनियादी ढांचे के विकास पर चीन की आपत्ति पर भारत ने कहा है कि चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए पूरे देश में ये किया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों में भी ये आर्थिक विकास और रणनीति तथा सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का ये बयान चीन की इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में आया है कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता नहीं देता। श्रीवास्तव ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। चीन को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल गुरुवार को ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमिक फोरम के दौरान चीन के साथ चल रही वार्ता के नतीजे सीमा की स्पष्ट स्थिति के बारे में विशेष तौर से पूछे जाने पर कहा कि वार्ता चल रही है और ये दोनों देशों के बीच गोपनीय बात है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर 1993 से कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार हुआ है। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 51.99 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में अल्पसंख्यक समूहों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने जापान में एक वैश्विक याचिका शुरू की है जो ओलंपिक वर्ष के दौरान एक कानून बनाने की उम्मीद में देश में एक समान अधिकार कानून की मांग कर रही है। कुछ एथलीट्स का कहना है कि इस अभियान को शुरू करने से उन्हें सुरक्षित रूप से खेलने में मदद मिलेगी। एलजीबीटी विधान के लिए जापान अलायंस के सह प्रतिनिधि निदेशक यूरी एग्रिशी कहते हैं कि ओलंपिक एक ऐसा समय है जब जापान अपने ऐसे विविध प्रयासों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकता है।
The Olympic Games, as you may know, proclaim diversity and harmony as its vision. As the Olympics is happening at this time and also for a legacy, we want to call for Japan to legislate LGBT equality law by working with international society.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में बौछारों में राहत, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री। कैनबरा में बौछारें, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 28, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 29 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।